जय राधा माधव कुंज बिहार, जय राधा माधव कुंज बिहार, गोपी जन बल्लभ गिरिवर धरे, गोपी जन बल्लभ गिरिवर धरे, दनंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वन सारे, यमुना तीर वन सारे, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन बल्लभ गिरिवर धरे, गोपी जन बल्लभ गिरिवर धरे, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वन चारी, यमुना तीर वन, यमुना तीर वन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हय राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचर सूत्र श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति विदान स्वामी श्री प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नमाचार श्री हरिदास ठाकुर की, ताई गौर हरि प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायण नमस्कृत्य जलये नरम चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 अध्याय 10 श्लोक संख्या 16 नाम नित्यं छुत्साम देहस्य दरिद्रस्यान् काक्षिणः दरिद्रस्यान् काक्षिणः इन्द्रियाणि अनुशुष्यन्ति हिंसापि विनिवर्तते। नित्यं छुच्छाम देहस्य दरिद्रस्य अनकाक्षिणः इन्द्रियाणि अनुशुष्यन्ति हिंसापि विनिवर्तते। नित्यं छुच्छाम देहस्य इन्द्रियस्य अनकाक्षिणः दरिद्रस्य अनकांक्षिणः इन्द्रियाणि अनुशुष्यन्ति हिंसापि विनिवर्तते। नित्यं छुच्छाम देहस्य दरिद्रस्य अनकांक्षिणः इन्द्रियाणि अनुशुष्यन्ति हिंसापि विनिवर्तते। माता जी शब्दार्थ नित्यं सदैव छुत भूख से क्षाम निर्बल देहस्य शरीर का दरिद्रस्य गरीब व्यक्ति के अनकांक्षिण सदैव पर्याप्त भोजन की इच्छा रखने वाला इंद्रियाणि इंद्रियों को जिनकी उपमा सर्पों से दी जाती है अनुशुष्यन्ति धीरे धीरे छीण से छीणतर होती जाती है। हिंसापि अन्यों से ईर्ष्या करने की प्रवृत्ति भी विनिवर्तते कम हो जाती है। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा दरिद्र व्यक्ति सदैव भूखा रहने और पर्याप्त भोजन की चाह करने के कारण धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। अतिरिक्त बल न रहने से उसकी इंद्रियां स्वतः शांत पड़ जाती हैं। इसलिए दरिद्र मनुष्य हानिप्रद ईर्ष्यापूर्ण कार्य करने में अशक्त होता है। दूसरे शब्दों में ऐसे व्यक्ति को उन तपस्याओं का फल स्वतः प्राप्त हो जाता है जिसे संत पुरुष स्वेच्छा से करते हैं। दरिद्रता भी अच्छा है। तात्पर्य, अनुभवी डॉक्टरों का मत है कि मधुमेह रोग अत्यधिक खाने से और क्षय रोग अत्यल्प खाने से होता है। कम खाने से क्षय रोग होता है। क्षय माने टीबी ना, मधुमेह माने शुगर। शुगर जो है ज्यादा खाने से होता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अनुभवी डॉक्टरों का मत है कि मधुमेह रोग अत्यधिक खाने से और क्षय रोग मतलब टीबी बहुत कम खाने से होता है। बहुत कम खाना, कभी नहीं खाना, ऐसे हमें न तो मधुमेह ही बनने न ही यक्षमाग्रस्त होने की कामना करनी चाहिए। याद अर्थ प्रयोजनम, हमें कम खाना चाहिए और इस शरीर को कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने के लिए दुरुस्त रखना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में अन्यत्र कहा गया है, कामश्च न इंद्रिय प्रीतिर् लाभो जीवेत जावता, जीवस्य तत्व जिज्ञासा न अर्थो यस्य कर्म भी। मानव जीवन का असली कार्य अपने को आत्म साक्षात्कार के लिए स्वस्थ रखना है। मानव जीवन इंद्रियों को वृथा हट्ठा कट्ठा बनाने के लिए नहीं है जिससे वह रोगग्रस्त हो या लड़ाई झगड़े की भावना लेकर ईर्ष्यालु बने, किंतु इस कली युग में मानव सभ्यता का इतना विपथन हुआ है कि लोग व्यर्थ ही अर्थ विकास में वृद्धि करके अधिकाधिक कसाई घर, मदिरालय तथा वेश्यालय खोल रहे हैं। इस तरह सारी सभ्यता चौपट हो रही है। तो नारद जी बहुत सुंदर आख्यान दे रहे हैं। अमीरी और गरीबी में तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कर रहे हैं। एक अमीर व्यक्ति है और एक गरीब व्यक्ति है। अमीर व्यक्ति के पास प्रचुर धन है, उसके पास बहुत पढ़ाई लिखाई भी अच्छा है, बहुत शरीर से भी सुंदर है और ऊंच कुल में जन्म भी लिया है, तो उसको संभावना रहती है कि वो अपने सतमार्ग से असत मार्ग में जाने की संभावना ज्यादा रहती है, विशेष करके धन। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो जिसके बाद बहुत प्रचुर मात्रा में धन है तो वो ज्यादा व्यक्ति के पास दुर्गुण आने की संभावना रहती है, और उसमें भी विशेषकर मद्यपान करना, अवैध संग करना, मांसाहार करना, जिस जो धन का सदुपयोग नहीं करता है और ज्ञान विवेकहीन है, उसको विवेक नहीं है कि धन का क्या उपयोग है, तो इस कार्य में धन का उपयोग करता है। शराब पीने में, मांस भक्षण करने में और अवैध संग करने में। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि पढ़ाई और ऊंच कुल में जन्म लेना, बहुत सुंदर शरीर प्राप्त कर लेना और बहुत धन प्राप्त कर लेना, तो इस सब में ज्यादा विमोहित करने वाला धन है। धन ज्यादा असत कार्य की ओर व्यक्ति को प्रेरित करता है। ये धन में बहुत नशा है। कनक कनक ते सौगुने, मैंने पिछले बार कहा था कि एक धतूरा तो खाने के बाद नशा होता है, धतूरे को भी कनक कहा जाता है और सोने को भी कनक। धतूरा खाने के बाद नशा होता है, लेकिन सोना, किसी को ज्यादा मात्रा में सोना मिल जाए तो उसको मिलने से ही, पास में आ जाने से ही नशा हो जाता है। व्यक्ति पास बहुत धन है तो उसके बहुत हमेशा नशा में रहता है वो धन के। धन भी जीव को ज्ञान से विपत्त करता है। जब व्यक्ति को बहुत नशा हो जाता है शराब का या कोई भी मादक पदार्थ का, तो उसको अपने शरीर का भी शुद्ध बुद्ध नहीं रहता है, नहीं रहता है ना। जब व्यक्ति बहुत शराब पी लेता है तो कहीं रोड पर भी गिर जाता है, रोड पर भी सो जाता है। हम लोग देखे हैं कुछ दिन पहले, हम लोग कहीं कहाँ जा रहे थे तो एक व्यक्ति रोड पर ऐसे पड़ा हुआ था पी करके। उसको पता नहीं कि मैं अपने बेडरूम में हूँ कि कहाँ हूँ, पता नहीं, आराम से रहा था। कुत्ते आकर मुंह में पेशाब भी कर देंगे तो भी वो पी जाता है। एक व्यक्ति नशे में था, वो सोया था, कुत्ते आकर उसके मुख में पेशाब कर दिया। तो दूसरा व्यक्ति बाजू में था, जब उसका नशा गया तो कहा कि बाद में क्या चीज बहुत खारा लग रहा था। क्या तुम मुझे मुंह में पिलाया कि वो खारा लग रहा था। तो व्यक्ति ने कहा कि मैंने तो कुछ नहीं पिलाया, कुत्ता आकर आपके मुख पर जो है पेशाब कर रहा था। तो शराब के या कोई भी मादक द्रव्य के नशे में व्यक्ति को अपने शरीर का या विवेक शून्य हो जाता है, शरीर का शुद्ध बुद्ध भी नहीं रहता है। ये तो शराब का है, लेकिन नशा में भी, धन के नशा में भी व्यक्ति को विवेक नहीं होता है। ज्यादा धन के नशा में धनांध हो जाता है, जैसे शराब से मदांध हो जाता है, वैसे धन से भी धनांध हो जाता है। तो उसको व्यवहार क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है। धन से आदमी नशा में होकर कुछ भी कार्य करने लगता है, विशेष करके तीन कार्य में लग जाता है, द्युतम द्युत क्रीड़ा में लग जाता है, मद्यपान में, द्युतम मद्यपानम और स्त्री गमन, एक कार्य में लग जाता है। यही कार्य मणिग्रीव और नलकुबर, बहुत धनी थे और धनी बाप के संतान थे नलकुबर और मणिग्रीव। तो इतना धन था कि वो धन के अथ में वो लोग गलत कार्य करने लगे। कुबेर के पुत्र हैं, कुबेर जी तो बहुत धनी हैं, धन के देवता हैं, देवताओं के ट्रेजरर हैं, स्वर्ग के ट्रेजरी खजाने के वो मालिक हैं, खजांची हैं, बहुत पैसा है, ज्यादा पैसे और ऊंच पद, बहुत सुंदर शरीर भी था, बहुत शिक्षा पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छा हुआ था और शिव जी के पार्षद बन गए थे। तो हर चीज बहुत उच्च स्तर का उन्हें प्राप्त हुआ था, इसलिए उनको अपने ऊपर बड़ा गर्व था कि हम बहुत धनी के पुत्र हैं, बहुत धनी के हम पुत्र हैं। कोई धनी व्यक्ति होता है, एक बार परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कह रहे थे कि एक बार जैसे धनी और गरीब का होता है ना, कि अमीर और गरीब, तो एक रानी बीमार पड़ गई, राजा की पत्नी रानी, जब मुगल बादशाह की पत्नियों को बेगम कहते हैं, मुगल बादशाह होते ना उनकी रानियों को बेगम कहा जाता था। बेगम माने जिसको कोई गम ना हो उसको बेगम। को क्या गम है, बादशाह की पत्नी है। तो एक दिन बेगम बीमार हो गई और दासी भी बीमार हो गई, उसकी नौकरानी भी। तो डॉक्टर को बुलाया गया, तो डॉक्टर ने पहले रानी को देखा, भाई स्वाभाविक है, रानी जी का चेक किया तो रानी को 100 डिग्री टेम्परेचर था और नौकरानी को 102 डिग्री टेम्परेचर था। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको 100 डिग्री टेम्परेचर है और आपकी नौकरानी को 102 डिग्री। तो रानी ने कहा कि हमसे ज़्यादा क्यों हो गया, हमको ज़्यादा होना चाहिए, मैं रानी हूँ। मैं रानी हूँ तो मुझसे ज़्यादा उसको टेम्परेचर कैसे हो गया, ये धन का पद का होता, मैं उसमें भी हम आगे होना चाहिए, हमें आगे होना चाहिए, बुखार में भी हमसे दासी क्यों आगे रहेगी, मुझे आगे रहना चाहिए। तो नल कुंवर और मणिग्रीव वास्तव में बहुत सुंदर थे, उनका बहुत सुंदर शरीर था और बहुत प्रकार से ज्ञान विद्या भी जानते थे, बहुत बहुत प्रकार की विद्याएं जानते थे, कंप्यूटर साइंस में भी बहुत दक्ष थे वो लोग, कोई भी चीज निकालना हो, गूगल में सर्च करना हो, सब कर लेते थे वो लोग, कहाँ क्या मिलता है, कहाँ जाने पर हमें स्वतंत्र रूप से हम कुछ भी कर सकते हैं, वो सब सर्च कर लेते थे कि वहाँ जाएंगे तो कोई वहाँ नहीं होगा, वहाँ हम शराब पी सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं स्त्रियों के साथ, तो अपने ज्ञान का वो दुरुपयोग कर रहे थे। बहुत पढ़े लिखे थे, अभी कंप्यूटर तो यहाँ अभी है ना, वहाँ पहले से था। अलकापुरी में कंप्यूटर ये सब पहले से उधर है, ये आपके यहाँ अभी आया है। ये सब विद्या वहाँ तो पहले से है। तो बहुत ज्ञानी थे ही और हर चीज था, जब जहाँ ऑर्डर करते थे शराब आ जाता था। यद्यपि कैलाश में थे, शिव जी के पास में रहते थे वो लोग, लेकिन कभी कभी बोलते थे बैठे बैठे हो गया, थोड़ा वॉकिंग करने जाता हूँ। कभी कभी शिव जी से वो लोग अनुमति लेकर के वॉकिंग करने के लिए जाते थे, तो उधर कैलाश मंदाकिनी के तट पर बहुत सुंदर सुंदर उद्यान थे, बगीचे थे, उन बगीचों में देवलोक की अप्सराएं भी आती थीं, गंधर्व कन्याएं भी आती थीं, तो उधर जाते थे और शिव जी से अनुमति लेते थे कि हम लोग वॉकिंग थोड़ा टहल कर आते हैं। उधर प्रतिदिन जा करके वो लोग नृत्य करते थे स्त्रियों के साथ और शराब पी करके नशे में नग्न घूमते थे, कभी नग्न हो जाते थे, कभी कहीं गिर जाते थे, ऐसे करते थे, तो उनका ये रूटीन हो गया था। 30 श्लोक में नारद जी तुलना करें कि अमीरी और गरीबी, अमीरी और गरीबी जो है तो उसमें कह रहे हैं कि गरीबी अच्छा है, अमीरी में दुर्गुण आने के चांस रहते हैं, ज़्यादा धन मिलने से पद मिलने से व्यक्ति के अंदर विनम्रता नष्ट हो जाती है। जैसे कोई भक्त बहुत अच्छा रहता है मंदिर में, लेकिन जब टेंपल कमांडर हो जाता है तो लोग बोलते हैं कि रौद्र रूप में हो गया, प्राय होता है ऐसे, कई भक्तों का हम लोग देखे हैं, मैं स्वयं को भी अनुभव किया हूँ कि पद मिलने पर आदमी अलग हो जाता है, अलग चश्मा आ जाता है। ऐसे कई एक भक्त बोला कि एक भक्त कह रहा था कि जब ये टेंपल कमांडर नहीं था बहुत अच्छा इसका विनम्रता था, टेंपल कमांडर हो गया तो हो गया, तो पद मिलने पर व्यक्ति के अंदर स्वाभाविक कुछ बुराइयां आने लगती हैं। तो नारद जी कह रहे हैं कि अमीरी से गरीबी ठीक है, गरीबी में सद्गुण आते हैं, जो योगी लोग भक्त लोग तपस्या करते हैं, तपस्या करके जो गुण अर्जन करते हैं गरीबी में वो स्वतः आ जाता है, गरीबी व्यक्ति में बहुत धन्यता होता है, इसकी इंद्रियां भी शिथिल होती हैं, किसी को क्रोध करना, किसी को मारना, ये सब नहीं कर सकता है। जो जो बहुत गरीब होता है तो खाए बिना उसका शरीर शिथिल हो जाता है, जो इंद्रियों में जो वेग है कम पड़ जाता है, तो स्वाभाविक इंद्रिय निग्रह हो जाता है, किसी को मारना भी चाहे तो नहीं मार सकता है। यही कह रहे हैं कि यथा नित्यम छुच्छाम देहस्य, नित्य नित्य खाए बिना भूख से बेचारा तड़पते रहता है और सोचता है कि खाने को कुछ मिले, खाने के बिना वो उसका शरीर जो है शिथिल हो जाता है। यद्यपि वो चाहता है, आकांक्षा करता है कि कुछ खाने को मिले, दरिद्रस्य अन्नकाक्षिण, अन्न की आकांक्षा करता है, भोजन की आकांक्षा करता है कि कुछ मिले तो खाऊं, बहुत तीव्र भूख रहती, फिर भी व्यक्ति को मिलता भी है तो कम मिलता है, कभी वो भी नहीं मिलता है। कभी कभी ऐसे ऐसी गरीबी होती है कि व्यक्ति को सुबह मिला तो शाम को खाने को नहीं मिलता है, ऐसा भी होता है। इसका अनुभव जो गरीबी में से आया है उसको होगा, जो गरीबी में नहीं पला है उसको अनुभव नहीं होगा। तो इंद्रियानि अनुशुष्यन्ति हिंसापि विनिवर्तते, इसलिए दरिद्र मनुष्य हानिप्रद ईर्ष्यापूर्ण कार्य करने में असक्त होता है। किसी से झगड़ा करना, जानता है कि मैं कमजोर हूं, कोई मार देगा गिर जाऊं, इसलिए झगड़ा करने से बचता है, क्योंकि उसका शरीर कमजोर है, खाए बिना खुदे हो गया है तो क्या झगड़ा करेगा, ये नहीं, इतना खाए बिना टूट गया है कि पेट और पीठ दोनों एक हो गए हैं, पेट पीठ मिलकर दोनों हैं एक। एक कविता हम लोग पढ़े थे, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को वह आता, दो टूक कलेजे को करके पछताता। तो इतनी गरीबी में वो क्या झगड़ा करेगा, चलने में भी असमर्थ है, कभी कभी गिर जाता है भिखारी, इतना खाए बिना उसका शरीर निर्बल हो जाता, पेट पीठ मालूम है, तब पीठ है कि पेट है, दोनों मिलकर हैं एक, मुट्ठी भर दाना के लिए बेचारे जाते हैं, कोई गाली दे देता है, कोई ये कर देता है। तो गरीबी में जो दन्यता है गुण आ जाती है, वो चाह कर भी पाप नहीं कर सकते, वो चाह कर भी शराब खरीदने नहीं जा सकता है, 1000 रुपये का शराबी अंग्रेजी शराब कहाँ खरीद सकता है गरीब व्यक्ति, अमीर तो जल्दी खरीद सकता है। अमीर व्यक्ति को पाप करने के लिए ज्यादा सुविधा है और गरीब व्यक्ति को तो सोचना पड़ेगा, है गलत है, सही है, सही कह रहे हैं ना, गरीब व्यक्ति के पास कहाँ पैसा होगा कि 1000 रुपया निकाल करके वाइन शॉप में जाएगा। ये दृष्टि से नारद जी कह रहे हैं कि गरीब व्यक्ति जो है उसमें कुछ ऐसे गुण आ जाते हैं जो तपस्या करने से आते हैं। बहुत योगी लोग बिना खाए पीने पंचाग्नि जलाकर तापते हैं, ठंड में गर्म अपने शरीर को तपाते हैं, इंद्रियों को के वेग को शिथिल करने के लिए वो लोग जानबूझकर नहीं खाते हैं, और बल्कि गर्मी में भी चारों तरफ आग जलाते हैं और ऊपर सूरज का ताप, उसको पंचाग्नि बोलते हैं, पंचाग्नि लेते हैं, शरीर को शिथिल करते हैं कि इसके अंदर जो वेग है, जो तमोगुण है, उसको शांत करने के लिए तपाते हैं अपने शरीर को। योगी लोग तो तपाते हैं, लेकिन गरीब तो स्वतः तप जाता है, गरीब को तो खाने को ही नहीं मिलता, खुद वो तपस्या कर लेता है, ठंडी में ऐसे ठिठुरता है, कपड़े नहीं है, गर्मी में भी ऐसे तपते हैं, तो स्वाभाविक को तप करता है। अमीर लोग तप करने के लिए जाते हैं, लेकिन गरीब व्यक्ति तो गरीबी में ही इतना तप कर लेता है कि उसके अंदर सब जो तपस्या के जो करने के बाद जो गुण आते हैं वो अपने आप आ जाते हैं, नारद जी कह रहे हैं। तो नारद जी ये बात क्यों कह रहे हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं आगे के श्लोक में कि नारद जी को अनुभव था, नारद जी को अनुभव था क्योंकि वो गरीबी में पले थे, पूर्व जन्म में दासी के पुत्र थे, उनकी माँ बहुत गरीब थी। तो जो जिसके पांव में कांटा चुभा है वही न कांटा चुभने का दर्द जानता है, जिसके पांव में बवाई फटी है वही न बवाई का दर्द जानता है। किसी व्यक्ति के पैर में कांटा चुभे तो बहुत दर्द होता है, और जिसके पैर में कभी कांटे ही नहीं चुभे हैं तो क्या जानेगा कि कांटा चुभने का कितना होता है। कभी कभी कांटा बहुत अंदर चला जाता है, निकलने से भी नहीं निकलता है, व्यक्ति को बहुत पीड़ा होती है। या जिसके पांव में बवाई फट जाती है सर्दियों में तो चलने में बहुत पीड़ा होता है, जाके पांव न फटे बवाई वो क्या जाने पीर पर आई। तो जो गरीबी में नहीं पला है वो गरीबी का उसको अनुभव नहीं है। तो नारद जी तो गरीबी में दासी पुत्र, पूर्व जन्म में दासी के पुत्र थे, उनकी माँ बहुत गरीब थी, पिताजी भी मर गए थे बचपन में ही, तो माँ आश्रमों में जाकर झाड़ू पोछा लगाती थी, तो उनको गरीबी का ये था। गरीबी से नारद जी आगे चलकर के नारद जी के रूप में, गरीबी में इतना तपस्या करते थे, माँ के साथ वो भी जाते थे आश्रमों में, और आश्रम में साधुओं के यहाँ साधु का उच्छिष्ट खाते थे, और साधु लोगों के संग से उनको ये नारद जी का पद प्राप्त हुआ। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि गरीब व्यक्ति को ज्यादा सुलभ होता है साधु संग करने का अवसर, अमीर व्यक्ति के पास साधु नहीं जा पाते हैं। गरीब है तो उसका दरवाजा खुला रहता है, और अमीर व्यक्ति के दरवाजे पर तो प्रभुपाद जी लिखते हैं शिकारी कुत्ता बांधा रहता है, कोई जाना भी चाहे तो नहीं जा सकता है। अमीर व्यक्ति साधु संग करने से कतराता है, प्रभुपाद जी आगे का श्लोक में लिखते हैं, और गरीब व्यक्ति तो साधु को आए देखकर खड़ा होता है, नमस्कार करता है, सम्मान करता है, और उसके दरवाजे पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। देयर इज नो एनी प्रोहिबिटेड, नो प्रोहिबिशन, प्रोहिबिटेशन, यही बोलते हैं ना प्रोहिबिटेशन, कहीं कहीं लिखा रहता है ये प्रोहिबिटेड एरिया है, ये निषेध क्षेत्र है, इसके अंदर आना बिना परमिशन दंडनीय है, ऐसा लिखा रहता है ना, विदाउट परमिशन नो एडमिशन, ऐसा लिखते हैं लोग। या लोग लिखते हैं बी वेयर ऑफ डॉग, कुत्तों से सावधान, दरवाजे को तख्ती लगा देते हैं, कुत्तों से सावधान। अमीर व्यक्ति का घर है तो बड़ा बड़ा शिकारी कुत्ता भी रखता है, प्रभुपाद जी लिखते हैं कुत्ते से सावधान। धनी व्यक्ति अपने दरवाजे पर एक बड़ा शिकारी कुत्ता रखता है जिससे कोई उसके घर में घुस न सके, वह दरवाजे पर कुत्ते से सावधान लिखी तख्ती टांग देता है, और साधु पुरुषों की संगति से कतराता है, जबकि निर्धन उनके लिए अपना दरवाजा खुला रखता है। इस तरह निर्धन लोग धनी लोगों की अपेक्षा उनसे अधिक लाभ उठाते हैं। नारद मुनि पूर्व जन्म में दासी के निर्धन पुत्र थे, किंतु संत पुरुषों की संगति से बाद में स्वयं सुप्रतिष्ठित नारद मुनि बन गए। तो नारद जी कह रहे हैं कि गरीबी अच्छा है, अमीरी से गरीबी ठीक है, भक्ति के दृष्टि से। नारद जी अगर दासी पुत्र नहीं होते तो ये लाभ नहीं उनको प्राप्त होता, प्राप्त होता कंप्यूटर इंजीनियर होते या बहुत बड़े अमीर के पुत्र होते तो थोड़े जाते झाड़ू पोता लगाने के लिए, नहीं जाते हैं। और बड़ा घर का आदमी होता है तो निकलता भी है तो बड़ा बड़ा सिक्योरिटी के घेरे में रहता है, बहुत बड़ा आलिशान गगनचुंबी महल में रहता है, वहाँ साधुओं को पहुँचना ही मुश्किल है। साधु जाएंगे भी तो सिक्योरिटी गार्ड हैं, जाने ही नहीं देंगे। प्रपा लिखते हैं गरीब व्यक्ति के यहाँ कोई भी जा सकता है, बल्कि गरीब व्यक्ति साधुओं को देखकर ही खड़े होते हैं, सम्मान करते हैं, का संग करते हैं। तो नारद जी अपने अनुभव की बात को कह रहे हैं कि गरीबी भक्ति के लिए ठीक है। ये कभी नहीं लिखा कि हे भगवान मुझे उतना ही धन दीजिए, मुझे ज्यादा धन मत दीजिए, उतना दीजिए कि जितना से मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं और कोई साधु आए तो भी भूखा न जाए। इतना धन दीजिए कि मैं और मेरा परिवार और कोई अतिथि आए तो भूखा न जाए। तो नारद जी अपने जीवन से तुलना कर रहे हैं कि नल कुबर और मणिग्रीव धनी के पुत्र थे, जबकि उनको अवसर मिला था शिव जी के सानिध्य में रह करके भी, वो भी तीर्थ स्थल में भी, वहां भी वो अपने कार्य से विपत हो गए और असत कार्य में मद्यपान में स्त्री संग में गिर गए। तो धन का ये दोष है। ज्यादा धन होने से व्यक्ति को चांस रहता है कि वो अपने स्थिति से नीचे जा सकता है, और गरीबी में तो व्यक्ति को उठने का चांस होता है। गरीबी में व्यक्ति के अंदर सद्गुण आने के अधिक चांस होते हैं, वो साधु संग कर सकता है, उसके अंदर मिथ्या अहंकार नहीं आ सकता है। फालसी को धन के अंदर भी एक होता है, उसके अंदर अहंकार आना, लेकिन गरीब व्यक्ति तो उसमें क्या अहंकार आएगा, उसमें तो स्वाभाविक दैन्यता आ जाती है। विद्या विनय संपन्न नहीं, जो संत व्यक्ति होते हैं, संत प्रकार के लोग, उनके अंदर धन और विद्या आती है तो विनीत हो जाते हैं। उदंड व्यक्ति के पास धन और विद्या आती है तो वो और उदंड हो जाता है। जैसे सर्प जो है विषैला होता है, अगर मणि प्राप्त हो जाए तो और विषैला हो जाता है। किमसौ न भयंकर मणिना भूषित सर्प किमसौ न भयंकर। मणि से विभूषित सर्प है तो ऐसा नहीं कि वो बहुत विनीत हो और भयंकर हो जाता है। उसी तरह से विद्या धन अगर कुटिल व्यक्ति को मिल जाता है तो और बिगड़ जाता है, लेकिन अच्छे व्यक्ति के पास धन होता है तो विनीत हो जाता है। अच्छा व्यक्ति है संत प्रकृति का तो उसके बाद धन विद्या धन आता है तो विनीत हो जाता है। जैसे वृक्ष में जब फल आते हैं तो झुक जाते हैं, वृक्ष में फल आते हैं झुक जाता है। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति विद्वज्जना, विद्वान लोग जैसे नमित हो जाते हैं, जैसे फलदार वृक्ष की शाखाएं झुक जाती हैं। लोग देखें, हम लोग आम के गांव में देखें, आम के सीजन में आम के पेड़ में जब फल आता है तो आम जमीन तक उसकी शाखाएं झुक जाती हैं, जमीन को स्पर्श करने लगती हैं बाहर से। उसी तरह ज्ञानी लोग ज्ञान से और विनम्र हो जाते हैं, और मूर्ख को ज्ञान हो जाए तो और उदंड हो जाता है। रावण को ज्ञान था, धन भी था, तो और उदंड हो गया था। रावण भी बहुत ज्ञानी था और बहुत धन भी था, उसे और बदमाश हो गया था। विनया ददाति विनियम विनया ददाति पात्रत्वम पात्रता धनमाप्नोति धना धर्म सुख तथा सुखम। तो बहुत ऐसे कम देखा जाता है कि ऐसे धन से विद्या से अलंकृत लोग विनम्र होते हैं, ज्यादातर लोग उदंड हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। नारद जी अपने इतिहास से अपने विगत जन्मों के इस दृष्टांत को प्रस्तुत कर रहे हैं कि अमीरी से अच्छा है गरीबी, गरीबी में हमें ज्यादा अवसर मिलते हैं साधु संग करने के लिए, भक्ति करने के लिए। इसलिए गरीब व्यक्ति के पास कोई साधु भी जा सकता है। अमीर के दरवाजे पर तो शिकारी कुत्ते बंधे रहते हैं। निर्धन व्यक्ति साधुओं का तुरंत स्वागत करता है, उन्हें नमस्कार करता है, और उनकी उपस्थिति का लाभ उठाना चाहता है, किंतु धनी व्यक्ति अपने दरवाजे पर एक बड़ा शिकारी कुत्ता रखता है। कभी कभी साधु को आए देखकर कुत्ते को खोल देते हैं वो लोग। हम सूरीनाम गए थे तो सूरीनाम में बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम जाते थे 2018 में, तो ट्रेनिंग के लिए लोग भेजे थे मुझे सन्यास कमेटी, तो वहाँ हम लोग बुक लेकर के घर घर जाते थे। वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे तो कहे कि क्या सेवा करेंगे, तो मैं कहा कि जो भी दीजिए। तो बोले बुक डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ठीक है। तो जाते थे, कभी अकेले भी जाते थे तो, लेकिन हो जाता था वहाँ। तो एक दिन एक घर में गए, एक और हमारे साथ भक्त थे, तो बेल ऐसे मारे तो वो जो व्यक्ति था ऊपर घर में था वो अपना कुत्ता खोल दिया, और कुत्ता आ करके जा लगा कि हम लोग को काटते, हम लोग भागे जान बचाओ किताब कैसे भागे हम लोग, कुत्ता ही खोल दिया। ऐसे कई बार ऐसा हुआ सूरीनाम में, कई घरों में हम लोग जाते थे तो कुत्ते खोल देते थे। लोग सोचते थे कि पता नहीं कौन आदमी है कैसा है, ऊपर से लोग देख लेते थे, अब कुत्ता आता था ऊपर से भो करते विदेशों में मैं देखा कुत्तों का बड़ा ये है, किसी घर में आसानी से आप नहीं जा सकते हैं। अनुभव किया मैं सूरीनाम में, सूरीनाम नहीं गयाना में, गयाना में अनुभव किया। कभी कभी कई कुत्ते आ जाते हैं आजू बाजू के घर वाले, अब बचना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी सही लिखे हैं कि निर्धन व्यक्ति साधुओं का तुरंत स्वागत करता है, और निर्धन व्यक्ति कुत्ता कहाँ रखे, उसको खुद खाने का नहीं तो कुत्ता कहाँ से रखेगा, है उसको खुद ही खाने के लाले पड़ते हैं तो कुत्ता कहाँ से रखेगा। वो बहुत सुंदर, दरिद्र व्यक्ति सदैव भूखा रहने और पर्याप्त भोजन की चाह करने के कारण धीरे धीरे क्षीण हो जाता है उसका शरीर, अतिरिक्त बल न रहने से उसकी इंद्रियां स्वतः शांत पड़ जाती हैं, इंद्रियां शांत हो जाती, इंद्रियों का जो वेग है वाचो बेगम मनुष्य क्रोध बेगम जिह्वा बेगम उदरो उपस्त बेगम एतान बेगान, ये जो वेग है शिथिल हो जाते हैं। स्वाभाविक तपस्या कर लेता है, नहीं चाहते हुए भी तपस्या कर लेता है नहीं चाहते हुए भी एकादशी उपवास हो जाता है खाने के ही नहीं है तो एक व्यक्ति इतना गरीब था कि उस दिन खाने को नहीं था, जन्माष्टमी था तो उसका जन्माष्टमी व्रत का फल मिल गया, जब एक महात्मा कथा कर रहे थे। अतिरिक्त बल न रहने से उसकी इंद्रियां स्वतः शांत पड़ जाती हैं, इसलिए दरिद्र मनुष्य हानिप्रद लड़ाई झगड़ा मारपीट से दूर रहता है कि बस शक्ति ही नहीं है, वो क्रोध भी ईर्ष्या करने में भी अशक्त होता है, शक्ति नहीं। दूसरे शब्दों में ऐसे व्यक्ति को उन तपस्याओं का फल स्वतः प्राप्त हो जाता है जिसे संत पुरुष स्वेच्छा से करते हैं। संत पुरुष लोग स्वेच्छा से खाना छोड़ देते हैं, वस्त्र ओढ़ना ठंडी में छोड़ देते हैं, वे शिक्षा से करते हैं। गरीब तो बेचारा ऐसे ही करता है, इसलिए नारद जी की मैं भी दासी पुत्र था तो बहुत गरीब था, गरीबी में स्वाभाविक साधु संग तपस्या करना उपवास करना ये सब हो जाता था। तो नारद जी उसी का तुलना करें कि अमीरी और गरीबी, तो दोनों में भक्ति के लिए अगर चुनाव करना हो तो गरीबी बेहतर है, गरीबी बेहतर है। आपको क्या लगता है? समय हो गया है, इवन कोई प्रश्न है कोई कमेंट है? शरद जी
हरे कृष्ण महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी तरीके से आपने दृष्टांत बताया गरीबी और अमीरी का। सो नारद मुनि यहाँ पर हालांकि बात कर रहे हैं गरीबी का, जैसे आपने भी बताया कि एक कवि ने कहा है कि उतना ही पैसा देना जितना कि परिवार और जो अतिथि आए उनका भूखा नहीं जाए, तो यहाँ पे पॉवर्टी स्ट्रिकन जो मतलब जो गरीबी का जो बताया गया है, तो ये काफ़ी यू नो अनस्टेबल बोलते हैं ना, जैसे यू नो बहुत ही अनस्टेबल पोजीशन है, क्योंकि और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो गरीबी की जो अवस्था में जो नो ये ना एक प्रकार का वैराग्य नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि उसके पास मौका ही नहीं है,
इसको वैराग्य नहीं बोलेंगे।
और तपस्या और जैसा कि मैंने सुना है तपस्या की जो परिभाषा है, तपस्या का अर्थ होता है वॉलेंटरी इनकन्वीनियंस, जैसे कि आपको अगर मौका है लेकिन आप फिर भी नहीं कर रहे हो, ये परिभाषा है तपस्या की। तो गरीबी व्यक्ति जो है उसके पास मतलब मौका ही नहीं है, तो तपस्या हो जा रही है उसके, लेकिन लेकिन उसको फिर भी तपस्या नहीं कहेंगे, उसके लिए तपस्या कुछ और होगा। फिर
नारद जी तुलना कर रहे हैं, तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, और यह कह रहे हैं कि अमीर व्यक्ति से ज्यादा अवसर है गरीब व्यक्ति को साधु संगति करने का, और उसमें दुर्गुण कम आने का चांस होता है। धन के दोष से ज्यादातर देखा जाता है कि धनियों के पुत्र गलत कार्य में, शराब में, गलत आहार विहार में लग जाते हैं। गरीब को अवसर मिलेगा भी तो कहाँ से खरीद पाएगा, पैसा ही नहीं है। वो दृष्टि से कह रहे हैं, तुलनात्मक कर रहे हैं कि मैं दासी पुत्र था तो खाने के लिए आश्रम में जाना पड़ता था। जैसे बहुत गरीब लोग मंदिर आते हैं, अपने मंदिर में भी, अभी तो लॉकडाउन हो गए तो पहले बहुत लोग आते थे यहाँ, मंदिर सफाई करके लास्ट में प्रसाद खाकर जाते थे, तो उसको एक अवसर मिल रहा है ना, मंदिर सफाई करता है, फिर बचा हुआ रात को प्रसाद हम लोग देते थे। हम लोग पहले जब मंदिर सफाई के लिए नए भक्तों को हम ले आते थे, तो बहुत ऐसे लोग आते थे जो बोलते थे कि हम भी सफाई में भाग ले सकते हैं, तो सफाई करवाते थे, लास्ट में उनको हम लोग प्रसाद देते थे। वो दृष्टि से तुलना किए हैं नारद जी कि गरीब व्यक्ति को ज्यादा अवसर मिलता है, साधु संग कर सकता है, या साधु को भी गरीब के घर जाना हो तो ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, ये अमीर व्यक्ति के यहाँ जाने में बहुत परेशानी है, सब नहीं जा पाएंगे। गरीब व्यक्ति के घर में तो आसानी से साधु जा सकते हैं, और वो स्वागत भी करता है, गरीब व्यक्ति स्वागत भी करता है। वो तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कर रहे हैं, वो भले तपस्या नहीं कर लेकिन स्वाभाविक कुछ तपस्या हो जाता है, बिना खाए उसकी इंद्रियों में जो वेग है कम हो जाता है वो दृष्टि से। और वैसा व्यक्ति जल्दी भक्ति में प्रगति कर सकता है। जैसे नलकुबर और मणिगिरी गए थे, शिव जी के अनुसर थे, पार्षद थे, उनके लिए बहुत अवसर था प्रगति करने के लिए, लेकिन उनके अंदर ये था कि हम इतने धनी के पुत्र हैं, हमारे पास बहुत अच्छा योग्यता है, तो इसलिए उनको कभी कभी फाल्स ईगो आ जाता था, इसलिए कभी घूमने के बहाने जाकर गलत कार्य करने लगते थे। पैसा था ही तो ऑर्डर दे देते थे, शराब मंगा लेते थे, ऑर्डर दे करके कुछ कर लेते थे। अभी गरीब का लड़का होता तो उसका लाभ उठाता, कभी कभी ऐसा नहीं कि अमीर लोग, अमीर के लड़के भी लाभ उठाते हैं, अमीर लोग भी बहुत अच्छा भोजन करते हैं, लेकिन जा अधिकांशतः कम अवसर का लाभ उठाते हैं। ज्यादातर गरीब के बच्चे धन के अभाव में चाह करके भी कुछ चीज खाना चाहे तो नहीं खा पाते हैं, शराब पीना चाहे तो नहीं पी पाते हैं, चाहेंगे भी कि इतना महंगा तो नहीं कर पाते हैं। वो दृष्टि से कह रहे हैं कि उस दृष्टि से गरीबी गरीब व्यक्ति ठीक है, ये गरीब व्यक्ति को ज़्यादा अवसर मिलता है और साधु संघ का लाभ उठा सकता है, जबकि नलकुबर मणिग्रीव महाभागवत शिव जी के पास उसका लाभ नहीं उठा पाए, और आप रहते तो लाभ उठा लेते हैं। यह गरीब व्यक्ति झाड़ू पोछा लगाने वाला वो लाभ उठा लेता है, जो गरीब लोग आते हैं तो मंदिर में झाड़ू पोछा लगाते हैं तो वो भी लाभ ही उठा रहे हैं ना, मंदिर मार्जन कर रहे हैं। या शूज काउंटर में जो लोग तो सबसे ज्यादा लाभ वो लोग उठा रहे हैं, सबका पादुका रख रहे हैं। जो शूज काउंटर में या जो स्वीपर हैं, एक तरह से देखा जाए तो भक्ति सेवा का सबसे ज्यादा लाभ वो लोग उठा रहे हैं ना, भले वो नहीं समझ रहे हैं, अनजाने में वो मंदिर मार्जन कर रहे हैं। तो मंदिर सफाई करना, प्रसाद खा रहे हैं, कुछ लोग जब भी करने लगते हैं तो लाभ उठा रहा। अगर अमीर होता तो कहाँ आता वो मंदिर मार्जन करने के लिए, प्रसाद खाने के लिए नहीं आ पाता। गरीब है इसलिए मंदिर में आता है, झाड़ू पोछा लगाता है, प्रसाद खाता है, सेवा करता है, श्रद्धा भी रखता है। अमीर व्यक्ि होगा तो बोलेगा हमारे घर सैकड़ों नौकर चाकर हैं, हम झाड़ू लगाएंगे। एक लड़का आया था बहुत अमीर घर का, तो कहा कि मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगा, हमारे घर में नौकर हैं, झाड़ू पोछा लगा, मैं यहाँ झाड़ू लगाऊंगा। अगर गरीब आदमी होगा तो उसको कोई झिझक नहीं होगा, ठीक है। वो कहा हम झाड़ू क्यों लगाएंगे, हम घर में कभी किए ही नहीं है। लड़का भक्त बना था, चला गया वो। और यह भी नहीं है कि अमीर लोग भक्त नहीं बनते हैं, अमीर भी बनते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनते, लेकिन ज्यादा उन भक्ति के दृष्टि से नारद जी कह रहे हैं कि गरीब लोगों को ज्यादा अवसर साधु संघ का रहता है, और विनीत होते हैं, साधु को सम्मान करते हैं। धनी व्यक्ति के पास जाएंगे तो आपको 2-3 घंटा बैठा देगा बाहर। धनी व्यक्ति के पास हम लोग भी जाते हैं तो बोल देगा कि आज समय नहीं है, बोल दो बाद में आने के लिए। अब गरीब आदमी ऐसा बोलेगा नहीं बोलेगा। कभी कभी आप भी गए होंगे ना अमीर के पास, उनका आदमी आएगा प्यून है, बोलेगा आज नहीं मिलेंगे, बाद में आइएगा। अब वो पानी के लिए भी नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है। और कुछ अमीर बहुत आदर भी करते हैं, गरीब के पास जाए चले गए तो अपना सौभाग्य समझेगा कि अच्छा है महाराज जी आए हैं, क्या सेवा। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में कि नारद जी अपना तुलना कर रहे हैं नलकुबर और मणिग्रीव से, कि मैं दासी पुत्र था तो कितना विनीत था, और माँ के साथ साधुओं के आश्रम में जाता था, साधु संग किया, साधु का उच्छिष्ट खाया, साधु लोग अपना उच्छिष्ट दिए खाने के। आप अपना उच्छिष्ट देंगे किसी धनी व्यक्ति को, वो लेगा, स्वीकार करेगा, करेगा वो आपको मार भी देगा कि जूठा खिला रहा है। धनी व्यक्ति आपका उच्छिष्ट नहीं खाएंगे, वो अपना अपमान समझेंगे। और गरीब लोग बोलेंगे महाराज जी थोड़ा अपना उच्छिष्ट प्रसाद दीजिए। वो इस तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कर रहे हैं नारद जी। इसलिए अमीरी से गरीबी में रह करके भजन आसानी से हो सकता है। ऐसा अंग्रेजी में कहावत है कि मोर मनी मोर हेडेक, ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा उलझनों में आदमी उलझ जाता है, उसकी व्यवस्थापन में उसको कहाँ क्या करना, समय कम मिलता है धनी व्यक्ति को। धनी व्यक्ति के पास इतना कार्य रहता है, इतनी सारी व्यवस्थाएं रहती हैं, उसको अवसर नहीं मिलता है भजन करने के लिए चाहते हुए भी। बहुत पैसा है तो उसको व्यवस्था करना, उसको इन्वेस्ट करना, कर्मचारियों को देखना, है कि नहीं। बहुत धनी है तो उसके पास समय भी तो देना है व्यवस्था देखने के लिए, गरीब व्यक्ति है तो समय उसके पास रहता है। अमीर व्यक्ति कहेगा हम पैसा दे देंगे लेकिन हम आ नहीं पाएंगे। कई जगह हम लोग जाते हैं तो बोलते हैं भाई प्रभु जी हम आ नहीं पाएंगे, आप पैसा लेना है ले जाइए, आ तो आइए प्रात नहीं मेरे मैं बहुत व्यस्त हूँ, आप कहिए क्या सेवा कर दूँ लेकिन आ नहीं पाऊंगा बहुत व्यस्त हूँ, पैसा है लेकिन व्यस्त है बेचारा। तो वो दृष्टि से नारद जी कह रहे हैं, मह गए ना। धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।